तारीख 9 मई दिन बृहस्पतिवार, कार्यक्रम दिनभर। नमस्कार। नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि गांधी परिवार युद्धपोत INS विराट का इस्तेमाल निजी टैक्सी के रूप में करता था, मचा है बवाल।
वी रिस्पेक्ट हिम, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट द करप्शन ड्यूरिंग हिज गवर्नेंस।
अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीका के साथ व्यापार समझौतों को तोड़ने का आरोप लगाया चीन पर। गुरमीत राम रहीम के जेल में बंद होने के बाद डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को रिझा रहा है कौन सा दल?
अभी कोई ऐसी पार्टियां बोर ने आते जाते हैं, दरबार तो सबके लिए खुला, कोई भी आ सकता है। संगत के लिए तो कोई आदेश नहीं, संगत को तो ये एकजुट है, एकजुट रहेगी संगत।
पर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार कमलेश मठेनी से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताज़ा हमले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम जानते हैं कि राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए थे और इसके लिए हम उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं कर सकते। कल नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो गांधी परिवार युद्धपोत INS विराट का उपयोग निजी टैक्सी के रूप में करता था। मोंटेनेग्रो की एक अदालत ने 2016 में हुए चुनाव के दिन सरकार के तख्ता पलट की योजना करने वाले 14 लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें 2 रूसी, 9 सर्बियाई नागरिक और विपक्षी डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 सदस्य शामिल हैं। वकील ने कहा कि इन लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या करने की भी योजना बनाई थी और इनकी इस योजना को रूस का समर्थन हासिल था। अमेरिका 200 अरब डॉलर की चीनी वस्तुओं पर कल से आयात कर बढ़ाने जा रहा है। इसके कुछ घंटे पहले ही अमेरिका और चीन में एक नया वाकयुद्ध छिड़ गया। अमेरिका ने आयात कर को 150% बढ़ाने की योजना बनाई है। वहीं चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने वो समझौता तोड़ दिया जिस पर कुछ ही वक्त में हस्ताक्षर होने वाले थे। खबरों के मुताबिक चीन ने ड्राफ्ट में बड़े बदलाव किए थे, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि चीनी लोग अपनी बातों से पलटते नहीं। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने अपने हितों का बचाव किया है, लेकिन उम्मीद है कि अमरीका इस विवाद को बातचीत से सुलझाएगा। चीन को उम्मीद है कि अमरीका एक तरफा कदम उठाने के बजाय बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाएगा ताकि एक दूसरे का सम्मान करते हुए दोनों के लिए फायदेमंद समझौते तक पहुंचा जा सके। इस बीच चीन अपने कानूनी अधिकारों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये थे चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। यूरोप की महाशक्तियों का कहना है कि वो ईरान परमाणु समझौते का समर्थन करना जारी रखेंगे, लेकिन इस समझौते को बनाए रखने के लिए ईरान की किसी चेतावनी को स्वीकार नहीं करेंगे। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनी ने एक साझा बयान में कहा कि वो देखेंगे कि ईरान ने समझौते का कितना पालन किया। बुधवार को ईरान ने घोषणा की थी कि उसने समझौते से आंशिक रूप से खुद को अलग कर लिया है। इससे ठीक एक साल पहले अमेरिका ने समझौते से खुद को अलग कर लिया था। ब्रुसेल्स में पत्रकारों से बात करते हुए मोगेरिनी ने कहा कि यूरोपीय संघ समझौते का समर्थन करना जारी रखेगा। इस मामले को लेकर मैं निजी तौर पर काफी चिंतित हूँ। हम परमाणु समझौते के JCPOA को पूरी तरह से लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये हमारे और पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा का मामला है। अब तक हमने देखा है कि ईरान ने परमाणु समझौते से जुड़ी परमाणु संबंधित सभी प्रतिबद्धताओं को निभाया है, इसलिए लगता है कि हम इस अहम समझौते को बचाने के लिए 100% प्रतिबद्ध हैं। ये थे यूरोपीय संघ की विदेशी मामलों की प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनी के शब्द। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने 2 किलोमीटर दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। उनके इस परीक्षण के कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के एक राजदूत दक्षिण कोरिया पहुंचे थे। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया की एक मिसाइल 270 किलोमीटर तक गई और दूसरी 420 किलोमीटर तक पहुंची। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। लोकसभा चुनाव चरण दर चरण अपने मुकाम की ओर बढ़ रहा है और अब तक 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 12 मई को छठे चरण में मतदान होना है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर सपा बसपा, सभी की निगाहें इस पर हैं कि कौन कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें झटक सकता है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस दौरान नेताओं की बयानबाजी चरम पर है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी पर फिर से निशाना साधा और अब इस पर कांग्रेस बनाम बीजेपी का वाक युद्ध छिड़ गया है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीबीसी संवाददाता दिव्यार, जो कि हर दिन चुनाव की हर सरगर्मी और हर हलचल पर निगाह बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो वो बड़ा मुद्दा जो कि INS को लेकर है।
बिल्कुल, मैं आपको सीधा नरेंद्र मोदी जी से ही सुनाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा। आपको ध्यान ही होगा वैसे कि ये पहली बार नहीं है, राजीव गांधी को वो पहले भी भ्रष्टाचारी नंबर वन बता चुके हैं और कल भी उन्होंने रामलीला मैदान पर बुधवार को राजधानी दिल्ली में ये बात कही थी, आज भी उसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन वो बात क्या थी जरा पहले ये सुन लें, फिर मैं आपको जो वाद विवाद छिड़ा है वो सुनाऊंगी।
कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान INS विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, INS विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे।
कांग्रेस ने इसका खंडन किया, लेकिन पहले मैं ये भी ध्यान दिलाऊं कि जब भ्रष्टाचारी नंबर वन की बात हुई थी तब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, तब आप देखिए उनका तर्क क्या था। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया है। जवाब अमेठी की जनता देगी, जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। हाँ मोदी जी, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। तो जाहिर है वो उनका श्रीलंका में जो उनके साथ हुआ उसका जिक्र कर रही थी। और प्रियंका गांधी की इसी बात को ध्यान रखते हुए आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया।
राजीव गांधी इस देश का प्रधानमंत्री थे, हम सबको मालूम है। हम सबको ये भी मालूम है किस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में उनको ही बिकेम अ मार्टियर और उसके लिए वी रिस्पेक्ट हिम। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैनॉट टॉक अबाउट द करप्शन ड्यूरिंग हिज गवर्नेंस, about the misrule during his governance।
तो निर्मला जी कह रही थी कि भ्रष्टाचार की बात करने पर कोई मनाही नहीं होनी चाहिए अगर शहादत भी हुई है तो। तो पूरी ये जो बात हुई है इस पर अभी तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने तो प्रतिक्रिया नहीं दी, पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता की और प्रधानमंत्री को उनके ही शब्दों में सीरियल लायर, यानी बार बार लगातार झूठ बोलने वाला करार दिया।
द देन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी वॉज on an official visit।
तो पवन खेड़ा कह रहे थे कि ये एक आधिकारिक दौरा था जो जिस INS विराट के इस्तेमाल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और छुट्टी पर नहीं गए थे राजीव गांधी। और ऐसा नौसेना से रिटायर्ड वाइस एडमिरल विनोद पसरीचा ने साफ किया है। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि लेकिन तथ्यों से प्रधानमंत्री का कुछ लेना देना नहीं है। और पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले कई महीनों से राहुल गांधी प्रधानमंत्री को रफाल डील, नोटबंदी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने की चुनौती दे रहे हैं, पर इसकी हिम्मत नहीं कर पाए।
ये बयान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सभा में दिया था। तो दिल्ली की ही राजनीति की बात कर लेते हैं, जहां पर 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर मतदान होना है। और जो दल हैं बड़े दल, यानी कि 3 बड़े दल जो हैं,
त्रिकोणीय
मुकाबला है, तो वहां पर पूर्वी दिल्ली का आज हम जिक्र कर लेते हैं। तो प्रियंका दुबे अभी अभी कांग्रेस की एक रैली से वापस लौटी हैं, जरा सुनते हैं कि वहां उन्होंने क्या देखा और किसका पलड़ा उन्होंने कैसे देख रही हैं।
भाजपा से खड़े हो रहे गौतम गंभीर, आपकी आतिशी और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली के बीच में ईस्ट दिल्ली में काफी कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ के गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में आज शाम से ही कांग्रेस समर्थकों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। वो लोग इंतजार कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का, जो पहली बार यमुना पार आ रहे थे। इनफैक्ट वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि आज़ादी की बात से पहला कोई कांग्रेस अध्यक्ष है जो आम चुनाव में प्रचार करने के लिए यमुना पार आ रहा है, और वहाँ के लोग और कांग्रेस समर्थक इस बात से बहुत खुश थे, इसको वैल्यू कर रहे थे। इस बार ईस्ट दिल्ली के लोग, जो कि आम चुनाव के छठवें चरण में 12 मई को अपना मतदान करेंगे, उनके लिए बड़े मुद्दे हैं वहां पर साफ पानी की व्यवस्था, पॉल्यूशन जो कि हर साल के साथ दिल्ली में ज्यादा बढ़ता जा रहा है उससे वहां के लोग काफी परेशान है, और दुकानों की सीलिंग का जो एक मुद्दा था जो पुराना ईस्ट दिल्ली में जारी है उसको लेकर भी लोग वहां मतदान करने वाले हैं, क्योंकि व्यापारियों की बड़ी संख्या ईस्ट दिल्ली में रहती है।
प्रियंका दुबे बता रही थी, जो कि अभी अभी एक रैली से लौटी है, कि किस तरह के मुद्दे हैं और क्या क्या कैसा सीन है। लेकिन यहाँ की जो सीट है आज एक बार दोबारा से चर्चा में है, और वो जो सीट है इस पे आतिशी बनाम
बीजेपी से गौतम गंभीर, और बल्कि बड़ी ही गंभीर चर्चा मैं कहूँगी वो हो गई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने। उसमें उनकी आंखें भी भर आईं, वो लगभग रो भी पड़ी, और उन्होंने अपने विरोधी बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक पर्चा दिखाया पत्रकारों को जिसमें आतिशी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो उनके साथ थे प्रेस वार्ता में, उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें छपी थी। आतिशी ने कहा,
वो अपने चुनाव में कितना नीचे गिर सकते हैं वो उन्होंने और उनकी पार्टी ने दिखा दिया है। ये एक पर्चा है जो बीजेपी वालों ने गौतम गंभीर जी ने मेरी पूरी लोकसभा में अलग अलग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, विवेक विहार में, कृष्णा नगर में, अलग अलग हिस्सों में न्यूज़पेपर में बांटा है। और आज जब ये पर्चा मैं मीडिया के सामने रख रही हूँ तो ये पूरे देश के लिए सवाल होना चाहिए कि हमारे देश में कैसी राजनीति होती है, खासकर एक महिला के खिलाफ।
आतिशी ने यह आरोप लगाया है कि छपवाने पर पर्चे छपवाने और बांटने दोनों का काम गौतम गंभीर ने किया है। उन्होंने कहा कि उनके जैसी सशक्त महिला के खिलाफ जीतने के लिए अगर इतना गिर सकते हैं तो सांसद बनकर वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखेंगे। लेकिन इन आरोपों को गौतम गंभीर ने सिरे से खारिज किया है। ये भी कोई जानकारी नहीं है कि कितने पर्चे बांटे गए हैं, और उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो सके कि इन पर्चे बांटने छपवाने के पीछे उनका हाथ है तो वो राजनीति छोड़ देंगे।
अगर आप ये प्रूफ करते हैं तो मैं अभी इसी वक्त राजनीति से संन्यास लेता हूँ, अभी छोड़ूंगा। और अगर लोग जो ये कहते हैं कि अब तो आप अपना कैंडिडेचर वापस ही नहीं ले सकते, तो 23 तारीख के बाद अगर मैं जीतता भी हूँ तब भी मैं रिजाइन करूँगा।
साथ ही गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछिए कि क्या वो ये चुनौती स्वीकार करेंगे कि आरोप साबित नहीं हुए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब ये पूरा मामला मुझे लगता है इस चुनाव में भाषा और प्रचार के गिरते स्तर, हार जीत की और कड़ी होती लड़ाई, इस सब की ओर इशारा है। इससे पहले भी जो हम मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे, और ये पूरा विवाद आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ रहा। ट्विटर पर हैशटैग आई स्टैंड विद आतिशी ट्रेंड भी रहा। लेकिन ये भी दुख की बात है कि इस सब के बीच में भी राजनेता ये टिप्पणी करते रहे कि हो सकता है इस पूरी चीज़ के पीछे आम आदमी पार्टी की ही साजिश हो, यानी कि इतना गिरे हुए स्तर के पीछे भी कोई साजिश है, इसको कहने में किसी को कोई झिझक नहीं।
आप रैलियों की बात कर रही थी, तो आज कांग्रेस की ओर से भी रैलियां हुई और बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे थे। कांग्रेस की एक रैली यानी कि जिसमें प्रियंका गांधी थी, प्रतापगढ़ में उन्होंने रैली की, वहां पर आम जनता की आवाज़ सुन लेते हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी ने उस रैली में कुछ लोगों से बात की।
प्रियंका गांधी के तो बहुत बढ़िया भाषण है, शुद्ध साफ बोलना है, सोच अच्छी है,
सोच अच्छी है, आगे चल के भविष्य अच्छा रहेगा।
और मोदी जी यहाँ आए थे
कुछ नहीं,
मोदी जी के बस 4 मिनट के बाद पब्लिक वापस हो गई है, 4 मिनट के बाद पब्लिक वापस हो गई है।
और यहाँ की समस्या क्या है प्रतापगढ़ की?
सर, प्रतापगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ आज तक,
यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई फैक्ट्री है ना कोई कंपनी है।
हम लोग केवल ठगे गए हैं इन 5 सालों में। हम लोग भाजपा को ही पिछली बार वोट दिए, लेकिन हकीकत बात है कि इस बार भाजपा का नाम लेने से गुस्सा लगती है।
और खेती का क्या हाल है?
खेती का हाल तो है कि हम 50 बीघे जमीन हमारे जिसके पास वो भी नहीं है, हम तो छोटे मोटे किसान हैं।
रोजगार कोई भी नहीं दे रहा है, रोजगार के लिए नौजवान यहाँ का भटक रहा है प्रतापगढ़ का। अब क्या करें बताइए, हम लोग जो परीक्षा पास किए हैं, बीएड किए हैं, एमए किए हैं, टेट पास किए हैं, सुपर टेट पास किए हैं, तो क्या करें हम लोग, टहरे इनके सरकार
पे? सर तो जुमलेबाजी है, टोकर जुमलेबाजी
है, और ये सरकार दोनों यूपी और केंद्र की भी सिर्फ जो है फर्जी तरीके से चल रही है सरकार।
योगी जी
तो और चोर है, उन्होंने तो ही इस वैकेंसी को रोका नहीं, हम लोग कम से कम रोजगार तो पा जाते हैं।
योगी मोदी दोनों की बहुत ही गड़बड़ पोजिशन।
प्रतापगढ़ की आम जनता से बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी, और ये वो उन लोगों की आवाज़ें थीं जो कि प्रियंका गांधी की रैली में, यानी कि कांग्रेस समर्थक जो जनता है उनसे वो बात कर रहे थे। चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश का के लोकसभा चुनाव में दो सीटें बहुत चर्चा में हैं। ये वो दो सीटें हैं माँ बेटे की, जिन्होंने अपनी सीटें बदल ली। पीलीभीत मेनका गांधी की सीट रही है और सुल्तानपुर वरुण गांधी की। इस बार सीटें बदली, सुल्तानपुर से मेनका गांधी और पीलीभीत से वरुण गांधी बीजेपी उम्मीदवार बन गए। इस बीच मेनका गांधी पर ये आरोप भी लगते रहे कि उन्होंने कुछ मुसलमानों को लेकर बयान दिए। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये बात कहती नजर भी आती हैं। ये मामला पूरा क्या था, बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने चुनाव प्रचार के दौरान उनसे उनकी कार में बात की।
आप आई एक बयान को लेकर जिस तरह से विवाद उठा कि आपने कहा कि शायद आप बहुत ज्यादा निराश होंगी अगर मुस्लिम वोट नहीं देंगे,
तो इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है? मैं बहुत ज्यादा निराश होंगी अगर अखिलेश के लोग मुझे वोट नहीं देंगे, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा उनको उतना ही प्यार देती हूँ जितना सबको। अगर आप पीलीभीत के लोगों से पूछिए तो वो सब तो उतना ही आगे हैं जितने बाकी। और इस वक्त जो पीलीभीत के 500-600 हज़ार लोग आए हैं उसमें से करीबन आधे अखिलेश के लोग हैं जो मदद करने आए हैं, तो इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है? अगर आप इसको ट्विस्ट कर दो और बोलो कि मैंने कहा मैं आपको नौकरियां नहीं दूंगी अगर आप मुझे वोट नहीं दो, एक तो मैं नौकरियां किसको दे सकती हूँ, और ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर आप टेप देखें
इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके, ये पार्टी लाइन जो है उससे थोड़े डिफरेंट है।
नहीं, ये पार्टी लाइन का सवाल नहीं है, सवाल जो भी मैं बोलती हूँ वो दिल से बोलती हूँ कि आई रियली डू वांट एवरीबॉडी टू वोट।
एक और रीसेंट कंट्रोवर्सी जो चल रही है, जब से जो अभी यहाँ के सिटिंग एमपी हैं और आपके बेटे जी वरुण, एक और इशू है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपका रुख जानना चाहते हैं, पक्ष जानना चाहते हैं। आपने कहा कि भाई हमें जो है जो गांव वोट नहीं करेंगे वो ABCD कैटेगरी में आ जाएंगे, क्या ये सही नहीं है?
अखिलेश ने इसको एक हवा बनाया। एक तो ये पब्लिक मीटिंग नहीं था, ये हमारे बूथ प्रमुखों की मीटिंग थी, और उनको मैंने कहा कि पीलीभीत में हम इलेक्शन के बाद हर बूथ प्रमुख की काबिलियत देखते हैं, जो गांव से हम सबसे ज़्यादा से जीते वो बूथ प्रमुख के लिए AB या जो 80% 60-40 या जो भी है
जी,
ये बूथ प्रमुख से कहा जाता है।
लेकिन मिसेस गांधी, क्या ये सही नहीं है कि चौकीदार चोर है या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो भ्रष्टाचारी नंबर वन थे, इस तरह के कोर्ट्स आए, ऑन रिकॉर्ड आए हैं, तो ये क्या पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड और पॉलिटिशियंस?
नहीं, मगर आप पिछले इलेक्शन में देखे और उससे पहले भी देखे और उससे पहले हर दफा आप यही पूछते कि क्या पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड नहीं। नो, हम लोग एंशियंट ग्रीक्स भी शिकायत करते थे सोफोक्लीस की, ओहो आजकल के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, तो वही हालत है कि ओहो आजकल के इलेक्शंस बहुत गिरे हुए हैं।
अगर इलेक्शंस की बात करें, हम इस इलेक्शंस की और इश्यूज की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि जो कैंपेन्स चल रही हैं उसमें बड़े पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शन हो रहा है और इश्यूज तो निकल कर सामने ही नहीं आ रहे हैं।
ये हर कैंडिडेट को चुनना पड़ेगा कि क्या वो मुद्दा बनाएंगे। कुछ लोगों ने डेवलपमेंट चुन लिया, कुछ लोगों ने पर्सनैलिटी चुन लिया, ये आई थिंक इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
मेनका गांधी से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। 12 मई को हरियाणा की सभी सीटों यानी कि 10 सीटों पर चुनाव होना है, और इसमें नजर है डेरा सच्चा सौदा पर कि उनके अनुयायी किसे वोट देने वाले हैं। राम रहीम के जेल में बंद होने के बाद वहां पर क्या कुछ चल रहा है, जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान ने।
हरियाणा और पंजाब की राजनीति में गुरमीत राम रहीम का समर्थन पार्टियों की जीत में एक फैक्टर माना जाता रहा है। हरियाणा के 2014 विधानसभा चुनावों में बीजेपी के तत्कालीन हरियाणा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 44 उम्मीदवारों को उनका आशीर्वाद दिलवाने लेकर गए थे। उन्होंने उससे पहले नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया था।
अभी कोई ऐसी पार्टियां बोर नहीं, आते जाते हैं, दरबार तो सबके लिए खुला, कोई भी आ सकता है। संगत के लिए तो कोई आदेश नहीं, संगत को तो ये एकजुट है, एकजुट रहेगी संगत तो।
और संगत जब आदेश देगी तो फिर आप उसी हिसाब से करेंगे ना?
संगत को जैसे कोई आदेश करेगा तो बाद की बात है ना, टाइम देखेंगे।
गुरमीत राम रहीम बलात्कार और हत्या के जुर्म में जेल काट रहे हैं। उनकी गैर हाजिरी में अब भी सिरसा जिला के इस डेरे में हर शाम नाम चर्चा होती है।
नहीं, गलत तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा।
क्यों, मतलब आपको लगता नहीं कि भाई
तो नहीं विश्वास आएगा उन्हें ते पूरा चुकेंगे?
राजनीतिक दलों के लिए उनका समर्थन इसलिए इतना जरूरी रहा क्योंकि आज भी उनके अनुयायी हैं जो उन्हें अपराधी मानने से इनकार करते हैं।
सकते हैं आप बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट में अपराधी घोषित हो जाएंगे तो मान लेंगे?
नहीं, अपराधी घोषित कैसे हो जाएंगे, हम कैसे मान लेंगे अपराधी, जब अपराध हुआ ही नहीं तो फिर कैसे मान लें?
क्यों होगा साहब, जो सच्चाई है वो ऊपर आएगी।
तो आपका विश्वास तब भी बना रहेगा या नहीं?
विश्वास क्या हमारा, तो रब है ये।
इसलिए उनके जेल जाने के बाद भी हरियाणा के किसी नेता ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया।
वैसे तो राजनीति किसे लेना देना नहीं, पर मानना पड़ता है जो अच्छे बंदे हैं उनके लिए ये साथ देना पड़ता है।
सपोर्ट जो हमें डाउट है भी इन्होंने फंसाया उसको नहीं देंगे।
आपको क्या डाउट
है? मान लो आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है, हमें ऐसा लगा भी इन्होंने फंसाया तो उसको नहीं देंगे वोट। दूसरा कोई आगे कहेगा भी हम सच्चाई के साथ हैं तो उसको देंगे।
और मान लीजिए राजनीतिक कमेटी की जो है यहाँ पे उसी की तरफ से आदेश हो गया जिसका आपकी इसी सरकार को दो वापस से वोट,
फिर देंगे, फिर उसको देंगे,
देंगे। मतलब चाहे इन्होंने फंसाया हो तब भी उन्हीं को देंगे, लेकिन इन्होंने कह दिया कि उनको दो।
नहीं, वो सोच समझ के करेंगे, वो भी इन्होंने फंसाया है जो भी है, वो इतने बड़े सिस्टम को चला रहे हैं, वो अपना सिस्टम बनाकर ही कुछ कहेंगे ना।
2007 में डेरे में एक राजनीतिक विंग भी शुरू हुई जो डेरा में राजनीति से जुड़े फैसले करती है। अब इस विंग को कौन लोग चला रहे हैं इसका पता नहीं चल पा रहा, लेकिन नेताओं के अब भी डेरा में आने जाने से जाहिर है कि गुरमीत राम रहीम के डेरे अब भी हरियाणा की राजनीति में अपना प्रभाव रखते हैं।
ये थी डेरा सच्चा सौदा से सरप्रिया सांगवान की रिपोर्ट।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसने अमरीका के साथ किए गए व्यापार समझौते को तोड़ दिया है। सलीम रिज़वी की रिपोर्ट।
अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध में तेजी के आसार नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार की शाम फ्लोरिडा में एक रैली को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया कि चीन ने अमरीका के साथ किया गया व्यापार मामलों पर समझौता तोड़ दिया है।
So they're flying in, the vice premier tomorrow is flying in, good man, but they broke the deal. They can't do that, so they'll be paying.
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा कर दी है और वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक चीन अमरीकी नौकरियां चुराने और अमरीकी कामगारों के साथ छल करना बंद नहीं करता। ट्रंप ने अपने समर्थकों के मजमे के सामने ये भी कहा कि अमरीका को चीन के साथ व्यापार की कोई जरूरत नहीं है और जो सामान वो चीन से मंगाते हैं वो सब अमरीका में ही बनाया जा सकता है। उधर चीन ने ट्रंप के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चीन अमरीका के किसी दबाव में नहीं आएगा और ये भी कि चीन अपने हितों की रक्षा करेगा। गाओ फेंग ने कहा कि अगर अमरीका ने शुल्क बढ़ाया तो चीन उसके लिए भी तैयार है। अमरीका ने शुक्रवार से 200 अरब डॉलर के चीनी सामानों पर 10-25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। अमरीका और चीन के बीच ये ताजा वाक युद्ध उस समय शुरू हुआ है कि जब चीन के उप प्रधानमंत्री लियू ही अमरीका और चीन के बीच व्यापार समझौते पर ही आज से शुरू होने वाली बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने यह कहते हुए आयात कर में बढ़ोतरी करने से मना कर दिया था कि चीन के साथ बातचीत जारी है। अमरीका अभी तक चीन पर व्यापार के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप लगाता रहा है और 250 अरब डॉलर की चीनी वस्तुओं पर अब तक आयात लगा चुका है। इसके जवाब में चीन ने 110 अरब डॉलर की अमरीकी वस्तुओं पर आयात कर लगाए हैं और इसे इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड वॉर करार देते हुए इसका आरोप अमरीका पर लगाया है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये चेतावनी दे चुका है कि अमरीका और चीन के बीच के तनाव का असर वैश्विक बाजार पर पड़ सकता है। सलीम रिज़वी, न्यूयॉर्क।
और अब कार्यक्रम में आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और आज मेरे साथ हैं ज्योतिका सिंह।
श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
ज्योतिका के पास चिट्ठियां हैं, फीडबैक है,
बहुत
हमारे श्रोताओं की राय है।
जी, तो मैं सबसे पहले ईमेल से शुरुआत करती हूँ। राजेंद्र भट्ट राजविहार हल्द्वानी से लिखते हैं, आजकल पूरे देश में चुनाव का जोर है, हर कोई गरीब और किसान की बात कर रहा है पर किसान की हालत में कोई सुधार नहीं है। मीडिया भी चुनाव पर पूरा ध्यान दिया बैठा है। आज सुबह के कार्यक्रम में मंदसौर की प्याज उत्पादन करने वाले किसानों पर सलमान रावी की रिपोर्ट सुनी जिसे सुनकर बहुत दुख हुआ। पिछली सरकार में भी उनकी यही दशा थी, अब वहां कांग्रेस की सरकार है तो तब भी वही दशा है। आम उपभोक्ता को आज भी प्याज 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा है। सरकार को किसानों का प्याज उचित दाम पर खरीदने का फैसला लेना चाहिए। बीबीसी ने इस चुनावी मौसम में उनके बारे में जानकारी दी, बहुत धन्यवाद।
तो राज भट्ट जी, आपने सुबह सलमान रवि की रिपोर्ट सुनी और आपको अच्छी लगी, तो हमारा ये कहना है कि इस तरह की रिपोर्टिंग से एक मंतव्य बनता है, लोगों का एक नज़रिया बनता है, और वही हमारी एक तरह से जिम्मेदारी भी है, ताकि जिस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का, जो अंधेरे कोनों में पड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर रोशनी डाली जाए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला ईमेल छोटी सी शिकायत लेकर तो आता है, पर साथ ही साथ वो खुश भी हैं। गौतम दत्ता किशनगंज से लिखते हैं, लगता है चुनावी माहौल के कारण बीबीसी ने दुनिया जहान को सस्पेंड कर रखा है।
बिल्कुल, ये तो हमने घोषणा कर दी थी कि दुनिया जहान 23 मई तक कम से कम हम नहीं कर पाएंगे, उसके बाद उसकी तारीख की घोषणा की जाएगी।
साथ ही साथ वो लिखते हैं, इसकी कमी खल तो रही है, परंतु आपने इसकी कमी को पूरा कर दिया है। राजनीतिक चुनावी समाचारों से आपके रिपोर्टर बखूबी राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं।
तो आप नोटिस कर ही रहे होंगे कि हम जितने ज्यादा राजनेताओं से बात कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं, और दुनिया जहान की जहां तक बात है वो मैंने बता ही दिया है कि इंतजार कीजिए, वो तो लौटेगा।
अगला ईमेल नालंदा बिहार से अमित कुमार ने लिखा है, काफी समय बाद सुशीला सिंह और वंदना की सुरीली आवाज बीबीसी पर सुनाई पड़ी, दिल बाग बाग हो गया।
जी हाँ, वंदना के पास भी और सुशीला के पास भी दूसरी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन चिट्ठियां पढ़ने के लिए उनको हमने खास रिक्वेस्ट की और वो आकर के आपकी चिट्ठियां पढ़ी, आपकी राय आप तक पहुंचाई, और मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा।
अगला ईमेल है जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी से लिखते हैं, बीबीसी के मोहम्मद शाहिद के समक्ष दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी निरुत्तर हो गईं। कांग्रेस के भोपाल प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी से फैसल मोहम्मद अली जी की बातचीत दिनांक 7 मई को प्रभातकालीन सभा में सुनने को मिला। ये जानकर अच्छा लगा कि इस बार कम से कम कांग्रेसी लोग पूरे देश में रिएक्ट करने से बच रहे हैं।
ये जंग बहादुर सिंह जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस रिएक्ट करने से बच रही है, पता नहीं इनका मंतव्य क्या है। आपको फैसल मोहम्मद अली की दिग्विजय सिंह से बातचीत पसंद आई, धन्यवाद।
अगला ईमेल है छिदरपाल सिंह पदमपुर राजस्थान से, आपका प्रोग्राम 1975 से सुन रहा हूँ, 20 सालों से कनाडा में हूँ, खिलाड़ियों को भी लाया करो।
ये थोड़ी सी एक ऐसी बात है जिसमें आपको हर सोमवार की सुबह जो खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम होता है उसमें हम एक कैप्सूल, एक मैगजीन आइटम टाइप का हम देते हैं जिसमें खिलाड़ियों की आवाज़ें भी होती हैं। हाँ, ये बात आपकी अलग है कि अलग से इंटरव्यू जो है वो खिलाड़ियों का शायद इस बीच नहीं कर पाए हैं, क्योंकि चुनावों की गहमा गहमी इतनी ज़्यादा होती है कि हम पूरी अच्छी तरह सब चुनावों की खबरें भी आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जितना विशाल पैमाने पर यह चुनाव हो रहा है। तो खिलाड़ियों के इंटरव्यूज भी होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
अगला ईमेल वाराणसी से डॉक्टर राहुल कुमार लिखते हैं, मुखिया न्यायाधीश के बारे में दिव्या आर्या की रिपोर्ट पूर्वग्रह से ग्रस्त होती है और उसमें अति महिलावादी दृष्टिकोण झलकता है। इस मामले में दिव्या आर्या ने एक तरफा रिपोर्टिंग की है, वो आरोप लगाने वाली महिला के बचाव पक्ष की वकील की तरह व्यवहार कर रही है।
राहुल कुमार जी, आपकी इस टिप्पणी को मैंने दिव्या आर्या तक पहुँचा दिया है, और दिव्या आर्या जिस तरह से बीबीसी की रिपोर्टिंग करती हैं उनकी तटस्थता पर कोई शक नहीं है और उनके प्रोफेशनलिज्म पर भी कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, उनको अगर कुछ कहना होगा तो अगले कार्यक्रमों में हम उनसे पूछेंगे कि आपकी राय इस आलोचना पर क्या है।
जी, अगला ईमेल है बॉब नदीम का, लिखते हैं कि हर लेख आपके भी सही नहीं होते वसतल्ला खान जी, रमजान के चांद के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये वही समझा सकते हैं, आप हर किसी के ब्लॉग ऐसे नहीं छाप सकते।
वसतुल्ला खान की आलोचना कर रहे हैं बॉब नदीम साहब, लेकिन कहां से इन्होंने ये ईमेल या चिट्ठी लिखी है ये नहीं
लिखा है।
इन्होंने आलोचना की है, लेकिन वसतुल्ला खान की तारीफ तो बहुत होती है।
तारीफ मैं अब पढ़ने ही जा रही हूं। अगला ईमेल है रफीक इब्राहिम पार्कर रत्नागिरी महाराष्ट्र से लिखते हैं, आज सुबह नमस्कार भारत में वसतुल्ला खान की रमजान के चांद के बारे में डायरी वाकई बहुत अच्छी लगी।
अब देखिए, ये बॉब नदीम साहब और पार्कर साहब दोनों के विचार बिल्कुल एक ही विषय पर हैं। तो अब श्रोताओं से विदा लेते हैं क्योंकि अब समय हो चला है। चलते चलते पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के INS विक्रांत वाले बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। मोंटेनेग्रो की एक अदालत ने 2016 में हुए चुनाव के दिन सरकार के तख्तापलट की योजना करने वाले 14 लोगों को दोषी करार दिया है। अमरीका 200 अरब डॉलर की चीनी वस्तुओं पर कल से आयात कर बढ़ाने जा रहा है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार।